नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज असम में 18,530 करोड़ रुपए की बुनियादी ढांचा और औद्योगिक विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी दरांग में कई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। इनमें दरांग मेडिकल कॉलेज और अस्पताल तथा जीएनएम स्कूल और बीएससी नर्सिंग कॉलेज परियोजना तथा इस क्षेत्र में चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा सुविधाएं शामिल हैं। गुवाहाटी में यातायात सुविधा बढ़ाने, भीड़भाड़ कम करने और संपर्क मार्ग में सुधार करने के लिए गुवाहाटी रिंग रोड परियोजना की आधारशिला भी रखी जाएगी। इसके अलावा ब्रह्मपुत्र पर कुरुवा नरिंगी पुल का भी शिलान्यास होगा। प्रधानमंत्री गोलाघाट में नुमालीगढ़ रिफाइनरी संयंत्र में असम बायो एथेनॉल प्राइवेट लिमिटेड का शुभारंभ भी करेंगे। प्रधानमंत्री ने कल पूर्वोत्तर राज्यों मणिपुर और मिजोरम में 17,500 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने मणिपुर के चूड़ाचांदपुर में 7,300 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी और इम्फाल में 1,200 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन किया। चूड़ाचांदपुर में श्री मोदी ने सभी संगठनों से शांति के मार्ग पर आगे बढ़ने और अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने की अपील की।
मुझे संतोष है कि हाल ही में हिल्स और वैली में अलग अलग ग्रुप के साथ समझौतों के लिए बातचीत की शुरुआत हुई है। मैं सभी संगठनों से अपील करूंगा कि शांति के रास्ते पर आगे बढ़कर अपने सपनों को पूरा करें, अपने बच्चों के भविष्य को सुनिश्चित करें। और मैं आज आपको वादा करता हूं, मैं आपके साथ हूं।
श्री मोदी ने इम्फाल में कहा कि हिंसाग्रस्त लोगों को सामान्य जीवन में वापस लाने में मदद करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। आज हिंदी दिवस है। इसी दिन वर्ष 1949 में संविधान सभा ने देवनागरी लिपि वाली हिंदी को देश की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। गृहमंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि हिंदी देश की भाषाओं और बोलियों के बीच सेतु का काम करती है और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देती है।
आजादी के आंदोलन के राष्ट्रव्यापी बनने में हमारी भाषाओं की बड़ी भूमिका रही। हमारे स्वाधीनता सेनानियों ने जनपदों की भाषाओं में गांव देहातों की भाषाओं को आजादी के आंदोलन से जोड़ा। हिंदी के साथ ही सभी भारतीय भाषाओं के कवियों, साहित्यकारों और नाट्यकारों ने लोक भाषाओं में, लोक कथाओं में, लोक गीतों और लोक नाटकों के माध्यम से हर आयु वर्ग और समाज के भीतर स्वाधीनता के संकल्प को प्रबल बनाया।
श्री अमित शाह आज गुजरात के गांधीनगर में महात्मा मंदिर में 5वें अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का उद्घाटन कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में संसद और राज्य विधानमंडलों की महिला सशक्तिकरण समिति का 2 दिन का राष्ट्रीय सम्मेलन आज से शुरू हो रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू इसका उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष एक प्रदर्शनी का उद्घाटन और स्मारिका का विमोचन भी करेंगे। इस सम्मेलन में देशभर से 100 से अधिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में लगातार बारिश के कारण श्री माता वैष्णो देवी तीर्थ यात्रा फिर स्थगित कर दी गई है। ये यात्रा आज से शुरू होने वाली थी। 26 अगस्त को मूसलाधार बारिश के कारण यात्रा मार्ग पर भूस्खलन से कुछ घंटे पहले यात्रा अस्थायी रूप से रोक दी गई थी। महिला एशिया कप हॉकी के फाइनल में आज चीन के हांगझोऊ में भारत का मुकाबला चीन से होगा। मैच भारतीय समयानुसार शाम 5:30 बजे से खेला जाएगा। भारत और मौजूदा चैंपियन जापान के बीच कल सुपर फोर मुकाबले का मैच 1-1 गोल से ड्रॉ रहा। बांग्लादेश की लोक संगीत की प्रसिद्ध गायिका फरीदा परवीन का कल रात निधन हो गया। उन्हें लालन गीतों की रानी के नाम से जाना जाता था। वे 70 वर्ष की थीं। T20 एशिया कप क्रिकेट में आज दुबई में ग्रुप ए में भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। ये मैच रात 8 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज बिहार, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, गोवा और सिक्किम में कई स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।